प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षेत्रीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु जब किसी निश्चित प्रदेश, क्षेत्र या सारे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है तो उसे क्षेत्रीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह प्रशासनिक जिलों के अनुरूप हो, ये उनसे बड़े या छोटे भी हो सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र जैसे हमने बताया कि कोई एक समुदाय नहीं बल्कि भौगोलिक क्षेत्र की एक पट्टी है जिसमें मतदाता निवास करते हैं। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब संपूर्ण प्रदेश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त यानी बांट दिया जाता है जितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना है। यानी मान लीजिए 543 एमपीओं का चुनाव होना है तो निर्वाचन क्षेत्र को हम 543 क्षेत्रों में बांट देंगे और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है जो उसे एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रायः छोटे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से लगभग बराबर होते हैं। इस व्यवस्था में सर्वाधिक मत पाने वाले को, चाहे उसने 50% से कम ही मत क्यों न प्राप्त किए हों, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है क्योंकि उसे अन्य प्रत्याशियों की तुलना में अधिक मत प्राप्त हुए हैं। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का एक निश्चित समय के बाद परिसीमन यानी डिलिमिटेशन किया जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए भारत इसका उदाहरण है, ब्रिटेन में भी यही व्यवस्था अपनाई जाती है, अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान आदि देशों में भी एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है जैसे इंडिया में दिखाई देता है, ठीक है ना। अब कहते हैं बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। जब संपूर्ण क्षेत्र या प्रदेश को उतने निर्वाचन क्षेत्रों में जितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना है विभक्त ना करके कम निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है तब उसे बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि देशों में बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र पाए जाते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, इटली जैसे देशों में सारे देश के निर्वाचन क्षेत्र को समूह में बांट दिया जाता है और प्रत्येक समूह से अनेक प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। सामान्यतः डेनमार्क में प्रत्येक समूह में से 23, स्वीडन में 28 और इटली में 32 प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाता है, है ना। इसी प्रकार इज़राइल, मोनाको, नीदरलैंड में सारे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और राजनीतिक दलों को उस अनुपात में स्थान प्राप्त हो जाते हैं जिस अनुपात में उन्हें मत प्राप्त होते हैं। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है और उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए निरपेक्ष या पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती बल्कि निर्वाचन इलेक्शन कोटा की आवश्यकता होती है। यानी कि एक कोटा निश्चित कर देते हैं कि इतना वोट तो आपको मिलना चाहिए। मतदाताओं के पास उतने ही मत होते हैं जितने प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित होते हैं। मतदाता अपनी वरीयता की अभिव्यक्ति 1, 2, 3, 4 संख्या अंकित करके कर सकते हैं तथा मतों का हस्तांतरण होता है। जैसे एकल संक्रमण मत प्रणाली होती है जिसमें मत जब हम वोट देते हैं तो उतने ही वोट देते हैं जितने मेंबर होते हैं, मगर हम प्रेफरेंस दे देते हैं कि 1, 2, 3, 4 है ना, जो जिसको हम ज़्यादा पसंद करते हैं उसको पहला नंबर दे देते हैं, जिसको कम पसंद करते हैं उसे दूसरा नंबर दे देते हैं और इसी प्रकार वोट करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था होगी कि जैसे मान लीजिए 543 MP चुनने हमें, तो हम 543 भागों में विभक्त ना करके उसे 300 भागों में विभक्त करेंगे निर्वाचन क्षेत्र को, और उनमें से 543 MP चुनेंगे, ठीक है। मगर क्या होगा, ये वो एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होगा, जैसे प्रेफरेंसेस देंगे हम अपने मत कि जिसको हम पसंद करते हैं उसको पहला नंबर दे देंगे, जिसको कम पसंद करते हैं उसको दूसरा नंबर दे देंगे। तो ये तो था निर्वाचन प्रणाली बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, और एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र जैसे कि हम देखते ही हैं कि जितने कैंडिडेट खड़े होने उतने उम्मीदवार को, जितने उम्मीदवार खड़े होने उतने क्षेत्रों में बांट देते हैं। जैसे दिल्ली विधानसभा है, तो दिल्ली विधानसभा में 70 MLA हो सकते हैं, तो दिल्ली विधानसभा को 70 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। अब हम देखते हैं कार्यात्मक एवं व्यावसायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। ये एक समान व्यवसाय वाले मतदाताओं के लिए उनका एक स्वतंत्र निर्वाचन होना चाहिए। कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व यानी फंक्शनल और वोकेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कि प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली के ठीक विपरीत है। इस प्रणाली की ये धारणा है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली समाज, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली समाज के भिन्न भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये भिन्न भिन्न हितों के प्रति अन्याय है। क्षेत्रीय सीमाएं कृत्रिम हैं, बनावटी हैं, और वे भिन्न भिन्न वर्गों के हितों की वास्तविक समस्याओं को प्रदर्शित नहीं कर पाती। कार्यात्मक एवं व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की कार्यप्रणाली के समर्थकों का मत है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली के स्थान पर व्यावसायिक, कार्यात्मक और वर्गीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली ले ले। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई जैसे एक जैसा काम धंधा करने वाले लोगों का नेता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बनिए हैं, है ना, तो बनिया व्यक्ति बनिए को ही वोट करे, ये वोकेशनल है ना। जैसे शिक्षक आदमी है तो शिक्षक को वोट करे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो ये वाली व्यवस्था है जिसे हम कार्यात्मक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक व्यवसाय वाला प्रतिनिधित्व केवल अपने व्यवसाय के हितों का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। उदाहरण के लिए एक अध्यापक अध्यापक के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, एक कृषक एक किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तथा एक जूता बनाने वाला जूता बनाने वाले साथियों के प्रतिनिधित्व कर सकता है। इन सब के उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। एक और हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है। ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जिसे डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कहते हैं, ये चुनाव प्रणाली अत्यंत सरल है। जब मतदाता यानी वोटर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेता है, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान केंद्र पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार उम्मीदवार को मत देता है, तो इसे हम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। यही चुने हुए प्रतिनिधि देश के शासन की बागडोर संभालते हैं। वर्तमान काल में विकासशील देशों अनेक देशों प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसे हम देखते हैं जनरल, अब ये कह रहा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कैसा होता है। इस चुनाव प्रणाली के द्वारा मतदाता प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करता, बल्कि मध्यवर्ती निर्वाचकों का चुनाव करता है और ये निर्वाचक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली दो बार चुनाव होता है। सर्वप्रथम मतदाता कुछ निर्वाचकों को चुनते हैं और ये निर्वाचक व्यवस्थापिकाओं के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधि का चुनाव सीधा मतदाताओं द्वारा ना होकर बीच में एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। साधारणतः विधानमंडल के दूसरे या उच्च सदन के प्रतिनिधियों का चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का उपयोग किया जाता है। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए भी चुनाव अप्रत्यक्ष द्वारा चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें वोटर जो होता है डायरेक्ट कैंडिडेट को नहीं चुनता, वो एक ऐसे ग्रुप को चुनता है जो कैंडिडेट को चुनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो पहले तो वो क्या करते हैं, जो जनता होती है अमेरिका की, वो एक ग्रुप चुनती है जो 543 या 520 आदमियों का ग्रुप होता है उनको चुनती है, और जो 520 आदमी होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। और अगर इसको साधारण भाषा में और बताऊं तो जैसे हम लोग अपने एमपी चुनते हैं, लोकसभा के एमपी चुनते हैं, है ना। तो जब हमने जो 18 साल का व्यक्ति होता है वो वोट डाल के अपना एक एमपी चुनता है, यानी लोकसभा का एमपी चुनता है। लोकसभा वाला एमपी राष्ट्रपति के शासन में पार्टिसिपेट करता है, यानी जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनती नहीं है, अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो राज्यसभा के एमपी का चुनाव, अपने लोकसभा के सांसद द्वारा वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार इसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं, जिसमें जनता डायरेक्ट भाग ना लेके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। चलिए आज का इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।